नमस्कार प्रिय श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दूसरा इतिहास नामक पुस्तक का अध्ययन विस्तार से कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आइए, इससे पूर्व कि हम आज के बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही है मेरे खुदा, मुझे
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका मसीह यीशु के नाम में इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल की पुस्तक में से दूसरे इतिहास की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि सुलेमान ने परमेश्वर के भवन का अर्थात मंदिर का निर्माण किया और उसने प्रार्थनाएं की, अपने लोगों को आशीर्वाद दिया। आज हम उससे आगे अपने अध्ययन में बढ़ेंगे और इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे जाएं, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आशीष मांगे। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि सचमुच में आप स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। इस समय प्रभु हमारी विनती है कि हम आपके वचन का अध्ययन करते हैं तो आप हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए। आज जो कुछ भी हम सीखते हैं निश्चित रूप से हम सबके जीवन के लिए आशीष का कारण बनने पाए। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं और तनाव में हैं। आप उन सब की सहायता करें, उन पर कृपा दृष्टि प्रदान करें, हम सबको अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। इस समय को हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसे मैंने कि कहा कि पिछले अध्ययन में हमने मंदिर के समर्पण की आराधना को देखा, हमने सुलेमान का संदेश और समर्पण की महान प्रार्थना को भी सुना और इस अध्याय में हम परमेश्वर की प्रतिक्रिया को देखेंगे। तो आइए आप मेरे साथ दूसरे इतिहास की पुस्तक उसके 7 अध्याय को निकाल लें। दूसरे इतिहास की पुस्तक 7 अध्याय उसके 1 पद में इस प्रकार से लिखा है, जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा और बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। मेरे प्रियो, आपको स्मरण होगा कि जब मूसा ने जंगल में मिलाप वाला तंबू खड़ा किया था तब भी यही हुआ था। जब उसने मिलाप वाला तंबू खड़ा कर लिया था तब परमेश्वर की महिमा उसमें भर गई। इसे हम निर्गमन की पुस्तक 40 अध्याय उसके 34 और 35 पद में पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सुलेमान द्वारा निर्मित मंदिर को स्वीकार किया। ध्यान दीजिए कि स्वर्गीय अग्नि ने बलिदान को भस्म किया। इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर का न्याय पाप पर आया। परमेश्वर ने मंदिर को उसके सौंदर्य के कारण स्वीकार नहीं किया था और यही सच है। वह उस पर किए गए अपार धन के कारण उसे स्वीकार नहीं करता है। स्वीकार करने का उसका कारण था कि वह मसीह की ओर संकेत करता था। उसका बलिदान ही एकमात्र कारण था कि परमेश्वर ने मंदिर को स्वीकार किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा उसमें भर गई, जैसा हमने अध्याय 5 के अंतिम पदों में देखा था, और अब स्वर्गिक अग्नि होम बलियों को भस्म करती है। मेरे मित्रों, उन लोगों पर परमेश्वर प्रकट होता था। नए नियम में पौलुस रोमियों को लिखकर समझाता है कि इसराइली कौन है। वह उनकी पहचान के 8 चिन्ह बताता है, एक पहचान की कि उनके पास परमेश्वर की महिमा थी। इसराइलियों की अपेक्षा अन्य किसी के पास परमेश्वर का आविर्भाव नहीं था। हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 7 अध्याय उसके 2 और 3 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। और जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब सब इसराइली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया, और यूं कहकर यहोवा का धन्यवाद किया कि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। मेरे मित्रों, यह एक अभिव्यक्ति है जो मेरे विचार में हमारी शब्दावली में आ जाना चाहिए और हम उसे बार बार काम में लें। वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। आपको स्मरण होगा कि भजनकार ने भी कहा है कि यहोवा भला है। परमेश्वर के उद्धार प्राप्त यही कहें। यदि आप और मैं यह कहने वाले विश्वासी न हो तो कोई नहीं कहेगा। मेरे मित्रों, राजनीति में तो कोई नहीं कहेगा कि यहोवा भला है। वे तो यही कहेंगे कि वे कितने महान हैं और उनका दल राष्ट्र के लिए क्या कर रहा है। परंतु परमेश्वर भला है, परमेश्वर के उद्धार प्राप्त यही कहें। कहने का अर्थ है कि जिन्होंने उद्धार प्राप्त कर लिया है वे इस बात को कहें कि परमेश्वर भला है। दूसरे इतिहास की पुस्तक 7 अध्याय उसके 4 और 5 पद में हम आगे पढ़ते हैं, तब सब प्रजा समेत राजा ने यहोवा को बलि चढ़ाई, और राजा सुलेमान ने 22,000 बैल और 120,000 भेड़ बकरियां चढ़ाई। यूं पूरी प्रजा समेत राजा ने यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। मेरे मित्रों, बाइबल पर विश्वास न करने वालों द्वारा इस पद की अत्यधिक आलोचना की गई है। उनकी आलोचना के 3 आधार हैं। पहला है, उनके विचार में ये बलिदान और बलि व्यर्थ का खर्च था। दूसरा, इतने अधिक बलिदान चढ़ाना उस वेदी पर संभव नहीं था। और तीसरा है, इतने अधिक पशुओं का संहार करने की आवश्यकता नहीं थी। जी हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि पशुओं पर निर्दयता की रोकथाम करने वाली संस्था इसका निश्चय ही विरोध करेंगे। अब आइए हम बाइबल के आधार पर इन 3 आपत्तिजनक विषयों पर ध्यान दें। हमें परमेश्वर के वचन के प्रकाशन में मनन करना है। सबसे पहले, यदि मंदिर सब कार्यकलापों का केंद्र था तो मेरे विचार में यह सब पशु उस एक ही वेदी पर नहीं चढ़ाए गए थे। इस विशेष अवसर के लिए उन्होंने शायद मंदिर परिसर में जगह जगह वेदियां बनाई होंगी, जो असंभव नहीं था। अब जहाँ तक व्यर्थ के खर्चे का प्रश्न है, प्रत्येक क्षेत्र के निवासियों के लिए यह आवश्यक था कि वे अपनी अपनी बलि चढ़ाएं। यह वैसा ही था जैसा कि मिस्र से निकलते समय प्रत्येक परिवार ने अपना अपना मेमना बलि किया था। उस रात हजारों मेमने बलि किए गए थे। वह व्यर्थ का खर्चा नहीं था। इसके 2 कारण थे। इसका प्रमुख कारण तो यह था कि यह प्रभु यीशु मसीह की बलि का प्रतीक था। मेरे मित्रों, पत्रस कहता है कि उसका लहू अनमोल है। पहला पत्रस की पत्री 1 अध्याय उसके 18 और 19 पद में हम पढ़ते हैं, तुम जानते हो कि तुम्हारा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। अतः यह व्यर्थ का खर्चा नहीं था, क्योंकि यह मसीह की ओर संकेत करता है। दूसरा कारण कि यह व्यर्थ का खर्चा नहीं था, वह मांस भोजन के काम आया। यद्यपि होम बलि तो भस्म हो जाती थी, मेल बलि भोजन के काम आती थी, मंदिर का समर्पण एक महान उत्सव और खाने पीने का समय था। मेरे मित्रों, हमें बाइबल के साथ निष्पक्ष रहना है। मैंने ऐसे मनुष्यों को स्वयं देखा है जो सदा ही प्रभु के लिए खर्च किए गए पैसे को व्यर्थ का खर्चा कहते हैं। यह एक विस्मयकारी सत्य है कि विश्वासी भी इस प्रकार की आलोचना के दोषी हैं। मैं एक प्रिय महिला को जानता हूं जो बाइबल अध्ययन में बड़ी रुचि रखती है। उसके स्वयं के घर में बाइबल अध्ययन कक्षा की व्यवस्था थी। एक बाइबल शिक्षक हमारी आराधना में आता था और लोग उसे बहुत सराहते थे। वे उसको भेंट भी देते थे। वह 10 दिन साथ में रहा और सदस्यों ने उसका संपूर्ण खर्च वहन किया तथा उसे 2,500 रुपये भेंट में भी दिए। इस महिला की समझ में वह व्यर्थ का खर्चा था। यह महिला संगीत में रुचि रखती थी और नगर की संगीत समिति की सदस्य भी थी। उस नगर में एक प्रसिद्ध गायक आया। उसने वहां एक ही दिन का कार्यक्रम किया और नागरिकों ने उसे सहर्ष 1,00,000 रुपये दिए। इस महिला ने इस भुगतान को बहुत सराहा। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि यह एक अति रोचक बात है कि प्रभु के नाम में किया गया व्यय व्यर्थ का खर्चा होता है और सांसारिक बातों में किया गया व्यय उचित है। मेरे मित्रों, यदि कोई कहे कि बलि के लिए चढ़ाए गए पशु अनावश्यक थे तो इस देश में प्रतिदिन कितने पशु वध किए जाते हैं? प्रतिदिन हजारों पशु वध किए जाते हैं। इसके विरोध में कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि यह अंततः हमारे उपभोग के लिए है, परंतु परमेश्वर के महिमान्वयन के लिए कुछ किया जाए तो आपत्ति जताने वालों की कमी नहीं होती है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं तो सुलेमान के पक्ष में ही हूं। मेरे विचार में उसने जो भी किया सही किया, क्योंकि वह सब प्रभु यीशु की ओर संकेत करता था। उसने मेरे लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाया है। हम दूसरे इतिहास के पुस्तक 7:6 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और याजक अपना अपना कार्य करने को खड़े रहे और लेवीय भी यहोवा के गीत के गाने के लिए बाजे लिए हुए खड़े थे, जिन्हें दाऊद राजा ने यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करने को बनाकर उनके द्वारा स्तुति कराई थी। और इनके सामने याजक लोग तुरहियां बजाते रहे और सब इस्राएली खड़े रहे। मित्रों, मेरी हार्दिक इच्छा तो यह है कि मैं प्रभु की स्तुति के निमित्त परमेश्वर के जनों को पा सकूं और कहूं, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। ओह, परमेश्वर मेरे साथ कैसा भला रहा है! क्या वह आपके साथ भला रहा है? अस्तु, आप भी ऐसा ही कहें। दूसरे इतिहास के पुस्तक 7:7-8 में हम पढ़ते हैं, फिर सुलेमान ने यहोवा के भवन के सामने आंगन के बीच एक स्थान पवित्र करके होम बलि और मेल बलियों की चर्बी वहीं चढ़ाई, क्योंकि सुलेमान की बनाई हुई पीतल की वेदी होम बलि और अन्न बलि और चर्बी के लिए छोटी थी। उसी समय सुलेमान ने और उसके संग हमात की घाटी से लेकर मिस्र के नाले तक के सारे इसराइल की एक बहुत बड़ी सभा ने 7 दिन तक पर्व को मनाया। मेरे प्रियो, हमात की घाटी उसके सीमांत प्रदेश से लेकर मिस्र की नदी तक अर्थात दुरास उत्तर प्रदेश से दक्षिण के छोर तक था। आगे हम देखते हैं, सुलेमान के समक्ष परमेश्वर फिर प्रकट हुआ। दूसरे इतिहास के पुस्तक 7:12-14 में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, वह टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, वह अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे मित्रों, मैं इस अंतिम पद पर कुछ अधिक ध्यान देना चाहता हूं, क्योंकि इसे इसके मूल अर्थ से वंचित करके संदर्भ से रहित उपयोग किया जाता है। यह पद परमेश्वर की प्रतिज्ञा स्वरूप अपनाया जाता है। कि यदि हम कर्म करेंगे तो परमेश्वर का पक्ष प्राप्त करेंगे। इस पद को किसी भी परिस्थिति में प्रासंगिक बनाया जाता है। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने कभी ऐसा प्रचार अभियान देखा है जहां कोई खड़ा होकर धर्मशास्त्र से इस पद को पढ़े और कहे कि वह इस प्रतिज्ञा पर निर्भर है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम इस पर ध्यान पूर्वक चिंतन करें, इसका यथा स्थान, विषय वस्तु और संदर्भ, तो हम इसके अर्थ को समझे बिना इसे दवाई की गोली की नाई निगलने से बच जाएंगे। हम इसे संदर्भ रहित बनाने के प्रयास में इसके साथ अन्याय करते हैं। अब क्योंकि यह पद हमारे विचारों में उपयुक्त स्थान पा लेता है, अतः हम जैसी चाहें वैसी इसकी व्याख्या करते हैं। हम इसको मूल उद्देश्य से वंचित करके प्राण शक्ति से रहित कर देते हैं। जिस प्रकार आज इसे प्रासंगिक बनाया जा रहा है, यह वास्तव में अर्थहीन हो जाता है। मेरे मित्रों, अब मैं आपसे सीधी सीधी बात करना चाहता हूं। मैं ईश्वरीय व्यवस्था का मानने वाला हूं। मेरे विचार में संपूर्ण बाइबल के साथ सतत व्यवहार में एकमात्र यही विधि काम आती है। परमेश्वर के वचन को शाब्दिक अर्थ और सच्ची व्याख्या इसी से प्राप्त होती है। मैंने जिसे बाइबल अध्ययन कॉलेज में अध्ययन किया है, जहां अधिकांश धर्मशास्त्र को इस कारण टाल दिया जाता था कि उनके पास उसकी व्याख्या नहीं थी। हमें तो इस प्रकार शिक्षा दी जाती थी, जिस प्रकार मुर्गियों को खिलाने के लिए जितना दाना चाहिए उतना ही दाना दिया जाता है, शेष की कोई चिंता नहीं, क्योंकि उनके पास उसकी व्याख्या नहीं है। मेरे प्रियो, इसमें समस्या यह थी कि अधिक जानकारी के लिए कोई भी आना नहीं चाहता था, क्योंकि यदि आप उससे अधिक जितना उन्होंने सिखाया है पूछ बैठे तो आप समस्या में पड़ सकते हैं। यद्यपि ईश्वरीय व्यवस्था के आधार पर व्याख्या करने में समस्या है, अन्य व्याख्याएं जो मैंने सुनी है उनकी तुलना में यही व्याख्या अधिक समस्याओं का समाधान सुझाती है। मेरे प्रियो, मैं आपको अपने विवाद के पक्ष में एक उदाहरण देता हूं। मैं यह मानता हूं कि पर्वतीय उपदेश भावी राज्य की प्रतीक्षा करता है और वह राज्य का नियम होगा। तथापि मैं यह भी मानता हूं कि इसमें हमारे लिए आज की शिक्षा निहित है। मेरे विचार में प्रभु की प्रार्थना अधिकांश आराधनाओं में जिस प्रकार समृद्ध समाज द्वारा पढ़ी जाती है, वह पूर्ण रूपेण अर्थहीन है। महाक्लेश के युग में यह प्रार्थना उपासकों के लिए वास्तव में अर्थपूर्ण होगी। मैं ईश्वरीय व्याख्या को मानता हूं, परंतु अतिवादी नहीं हूं। मैं पर्वतीय उपदेश का प्रत्याख्यान नहीं करता, मैं इस पर प्रचार भी करता हूं। इससे प्रकट है कि मनुष्य परमेश्वर के वचन के प्रति सिद्ध नहीं है। मुझे प्रभु की प्रार्थना अति उपयोगी प्रतीत होती है। मैं स्वयं उसे बोलता हूं। मैं तो उस पर एक पुस्तिका भी लिखने की कोशिश करता हूं। मेरे मित्रों, धर्मशास्त्र की व्याख्या एक बात है और उसकी व्यवहारिकता दूसरी बात है। आपको एक प्राचीन कहावत स्मरण होगी, संपूर्ण धर्मशास्त्र हमारे लिए लिखा गया है, हमारे ऊपर नहीं। धर्मशास्त्र के एक पद का अनुवाद उसकी पृष्ठभूमि और उसके संदर्भ द्वारा हमें शिक्षा देता है। वह हमारे ऊपर कदापि नहीं लिखा गया था। जी हाँ, हम पुराने नियम की आज्ञाओं को ही देखें, वे आज्ञाएं हमें नहीं दी गई हैं, तथापि संपूर्ण धर्मशास्त्र की व्यवहारिकता हमारे ही लिए है। संपूर्ण धर्मशास्त्र में परमेश्वर के पास हमें शिक्षा देने के लिए कुछ न कुछ अवश्य होता है। अब आइए हम दूसरे इतिहास के पुस्तक 7 अध्याय उसके 14 पद को देखें। यहाँ पृष्ठभूमि यह है कि सुलेमान द्वारा निर्मित दाऊद के मंदिर का समर्पण हो रहा है। यह उस समय और उस प्रदेश के संदर्भ में यह परमेश्वर का वचन है। समर्पण के समय सुलेमान ने जो प्रार्थना की वह हम पढ़ चुके हैं। परमेश्वर अपनी प्रजा की प्रार्थना सुनकर सुलेमान से कहता है, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। वह किससे बातें कर रहा है? मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। जी हाँ, यह इसराइल है। परमेश्वर इसराइल के संबोधन में सुलेमान से कह रहा है कि यदि वे दीन होकर प्रार्थना करेंगे, यदि वे उसके चेहरे को खोजेंगे, यदि वे अपने बुरे कामों से मन फिराएंगे, तो परमेश्वर उनसे तीन प्रतिज्ञाएं करता है। वह उनकी प्रार्थना सुनेंगे, वह उन्हें क्षमा करेंगे और वह उनकी मातृभूमि को चंगाई देंगे। जी हाँ, ये निश्चित शर्तें परमेश्वर ने इसराइल के समक्ष रख दी थी और इतिहास उनकी यथार्थता और अक्षर प्रत्यक्षर अर्थ प्रकट करता है। मेरे प्रियो, नए नियम में आप यूहन्ना बपतिस्मा दाता देने वाली की सुनते हैं। उसने भी कहा है मत्ती रचित सुसमाचार 3:2 में, मन फिराओ और पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और प्रभु यीशु मसीह ने राष्ट्र को इस पर व्यवहार करने के लिए इसे दोहराया है कि वे शर्तों को पूरा करें जिससे कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी हो। यह एक वैधानिक आमंत्रण था। हमारे आज के दिन इसराइली संपूर्ण विश्व में विसर्जित हैं। वे अपने देश में शांति से नहीं हैं क्योंकि उन्होंने इन शर्तों को पूरा नहीं किया है। यह शाब्दिक अनुवाद है। मेरे प्रियो, अब आती है व्यवहारिकता की बात। इस पद में हमारे लिए संदेश विहित है। मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए यह नहीं कहा था। इसमें आज के लिए एक सूत्र है, मेरी प्रजा। परमेश्वर की अपनी प्रजा है जिसे हम कलिसिया या मसीह की देह कहते हैं। उन्होंने मुक्तिदाता को ग्रहण किया है। हम तीतुस के पत्री 2:14 में पढ़ते हैं, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। मेरे प्रियो, मुझे ऐसा लगता है कि कोई हमें विचित्र प्राणी कहता होगा, परंतु ये लोग परमेश्वर की प्रजा हैं। दीन होकर, देह तो घमंडी है परंतु हमें आदेश है कि हम दीन बने। इफिसियों के पत्री 4:1-2 में हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो। गलातियों की पत्री 5:22-23 में हमें समझाया गया है कि धीरज और दीनता आत्मा के फल हैं। विश्वासी को आज्ञा दी गई है कि वह दीन बने। मेरे मित्रों, आप प्रार्थना करें। निश्चय ही नए नियम में हमें अनेकों अनेक बार कहा गया है कि हम प्रार्थना करें। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि वे जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। पत्रियों में प्रार्थना करने के असंख्य आदेश हैं। मेरे दर्शन के खोजी होकर, जी हाँ, यह भी नए नियम का आदेश है। कुलुसियों के पत्री 3:1-2 में हम पढ़ते हैं, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। जी हाँ, अपनी बुरी चाल से फिरें, यह हमारे लिए भी है। विश्वासियों के मन फिराव के लिए परमेश्वर बहुत कुछ कहता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3:19 में हम पढ़ते हैं, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सर गर्म हो और मन फिरा। मेरे प्रियो, मन फिराव परमेश्वर की संतान के लिए ही है। अब परमेश्वर की भूमिका के विषय क्या कहें। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि वह सुनेगा। हम पहला योहना के पत्री 3:22 में पढ़ते हैं, जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। मेरे प्रियो, उसने क्षमादान की प्रतिज्ञा की है जिसे हम पहला योहना की पत्री 1:9 में पाते हैं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी हाँ, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यह हमारे लिए नहीं है। मैं नए नियम में कहीं नहीं देखता कि हमें भू संपदा की प्रतिज्ञा दी गई हो। यदि परमेश्वर ने आपको व्यापार में आशीषित किया है तो यह एक अतिरिक्त आशीष है, यह प्रतिज्ञा से हटकर है। परमेश्वर ने हमें मसीह में सब स्वर्गीय आशीषें दी है, परंतु भौतिक आशीषों के प्रतिरूप का उल्लेख नहीं है। हम परदेशी हैं, परमेश्वर के बैरी, और अब हम मसीह का लहू हैं, और वह हमारे पापों को क्षमा करता है। स्वर्ग हमारा घर है और नया यरूशलेम हमारा लक्ष्य है। हम नरक से मुक्त किए गए हैं, यही हमारी आशीषें हैं। मेरे मित्रों, हमें कहीं भी भूमि पाने की या देश को ज्यों का त्यों कर देने की प्रतिज्ञा नहीं है। अब मैं आपसे कहता हूं कि यदि आप पद 14 को अपनी वर्तमान परिस्थितियों से जोड़ दें तो आपको पद 15 भी इसी के साथ स्वीकार करना होगा। क्या आप तैयार हैं? मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको इस बात पर सचेत रहने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन की व्याख्या किस रीति से अपने जीवन में करते हैं और लेते हैं। आज मुझे और आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में उन सत्यताओं को ग्रहण करें, उन बातों को स्वीकार करें, ताकि परमेश्वर को आपके जीवन के द्वारा से महिमा मिल सके। मेरे प्रियो, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है। कृपया आप अगले अध्ययन में भी अवश्य शामिल हो, परमेश्वर के वचन को सुने, दूसरों को बताएं और अपने जीवन में आत्मिक उन्नति को प्राप्त करें। प्रभु आप सबको इस अध्ययन के द्वारा आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन यीशु का, धन्य वचन होगा धन्य जीवन। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन होगा धन्य जीवन।